बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम सायराम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक वार्ता प्रसारित की जाएगी। उसके बाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी के साथ हुई हमारी एक भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। श्री कुणाल गांजावाला जी द्वारा गाए गए दो भजनों के प्रसारण के साथ आज के इस हिंदी प्रसारण की समाप्ति होगी। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा गौतम बुद्ध जी के जीवन पर, जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक वार्ता से।
जय श्री सायराम। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक दिव्य भजन से। बुद्ध के माध्यम से बहुत लोग जागे हैं ऐसा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को जगाया, उन लोगों को जो विचारशील हैं, उन लोगों को जो रैशनल माइंडेड हैं, जो लोग भावुक होते हैं, जिनके हृदय में प्रेम बह रहा होता है, उनको परमात्मा की ओर मोड़ना आसान होता है। जो लोग रैशनल माइंडेड होते हैं, हर जगह तर्क करना चाहते हैं, उनको समझाने में, उनको परमात्मा की ओर मोड़ने में थोड़ी सी दुविधा अवश्य आती है। मनुष्य का विकास हुआ तो उसके मस्तिष्क का विकास भी हुआ। बुद्ध धर्म को बुद्धि का धर्म बोला जाता है। आरंभ बुद्धि से है परंतु अंत बुद्धि में नहीं, और अंत है परमात्मा पर, जहां पर केवल परमात्मा साक्षी रह जाता है। कहा जाता है बुद्ध धर्म विश्लेषण का धर्म है, एनालिसिस का धर्म है। विचार आप करेंगे, कई हजार साल पहले, कोई 2500 साल पहले, एक सम्राट के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। बहुत समय के बाद वहां पर उनका पुत्र हुआ था। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ, राजा का नाम था सुद्धोधर। राजा की जो पत्नी थी, जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया था, उनका नाम था माया। जन्म के 7 दिन बाद, बच्चे को जन्म देने के 7 दिन बाद वह स्वर्गवासी हो गई। राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने सिद्धार्थ को पाल पोस के बड़ा किया। जब राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, हिमालय से एक ऋषि जिसका नाम था हसीता, वह उतर के जमीन पर पहुंचे, राजा के महल में पहुंचे। वह राजा के मित्र भी थे, बच्चे के दर्शन करना चाहते थे, बधाई देना चाहते थे, लेकिन दर्शन करके रोने लग गए। कभी रोते तो कभी हंसते। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम कभी रोते हो कभी हंसते हो? कहा, मैं हंसता इसलिए हूं कि मुझे आज उस बालक के दर्शन हुए हैं जिनको संसार का बहुत दिनों से इंतजार था, जो आने वाले समय में बहुत बड़े महात्मा बन सकते हैं। हंसता इसलिए हूं कि मुझको उनके दर्शन हो गए, और रोता इसलिए हूं कि मेरा जाने का समय आ गया, मैं इनकी वाणी को सुन नहीं पाऊंगा। कहा जाता है जोशियों ने बताया, महाराज आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी। राजा के मन में आया, अरे मेरा पुत्र सन्यासी बनेगा तो मेरे राज्य का क्या होगा? उन्होंने अपने बच्चे को राजमहल की चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया। लड़का बड़ा हुआ, सिद्धार्थ बड़ा हुआ, उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। 28 साल की उम्र रही होगी सिद्धार्थ की, उनको राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। युवराज के मन में आया, अगर मैं यहां का राजा बनने वाला हूं, कम से कम मुझे जाके अपनी जनता को तो मिलना चाहिए, उनके दुख सुख को समझना चाहिए। सारथी को आज्ञा दी, मुझे शहर ले चलो, मुझे राजमहल के बाहर ले चलो, मैं यहां के लोगों को मिलना चाहता हूं। बाहर उन्होंने देखा एक आदमी जो कुबड़ा था, जिसकी कमर झुकी हुई थी, झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने साथी से पूछा, भाई ये कौन है और ये ऐसे झुक के क्यों चल रहे हैं? सारथी बोला, युवराज ये कुबड़ा है, उम्र के साथ साथ इनकी कमर झुक गई है। अच्छा, तो क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? सारथी बोला, अवश्य। थोड़ा आगे जाकर देखा, एक वृद्ध बीमार व्यक्ति था, रोग से ग्रस्त था। युवराज ने पूछा, ये रोग से ग्रस्त है, ये क्या है, इसे क्या हो गया है? सारथी बोला, महाराज ये बीमार है, इसको रोग बोलते हैं, शरीर में बीमारियां आ गई हैं। युवराज ने प्रश्न किया, क्या जो बीमारियां मेरे को भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है महाराज। थोड़ा आगे गया, उन्होंने एक शव यात्रा को देखा, एक अर्थी जा रही थी, एक मृत शरीर को उठा के राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए उन्हें शमशान घाट लेकर जा रहे थे। युवराज से रहा ना गया, बोले ये क्या, चार कंधों पे एक अर्थी जा रही है, उसमें एक आदमी लेटा हुआ है, वो लेटा क्यों हुआ, सो क्यों रहा है, यहां पर क्या कारण है? सारथी बोला, महाराज वो सो नहीं रहा, वह मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु क्या होती है, क्या मृत्यु मेरे को भी आएगी? अवश्य महाराज आपको भी आएगी। युवराज बड़े चिंतित हो गए, बड़े दुखी हो गए, राजमहल लौट के आ गए, और रात भर वह सो नहीं पाए, करवटें बदलते ही रह गए। सर्वम दुखम, सब जगह दुख है। सर्वम भयम, सब जगह भय है। सर्वम अनित्यम, सब कुछ टेम्परेरी है। सर्वम शून्यम, सब शून्य है। रात को चुपके से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनके मन में प्रश्न थे, दुख क्या है, कहां से आता है, कैसे आता है, इसका निवारण कैसे किया जाए। उनके उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। कहते हैं उन्होंने कई ऋषि मुनियों के दर्शन किए, कई शास्त्र पढ़े, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। अंत में कहा जाता है एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, जिसे कहा जाता है बोध ट्री, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अचानक बोले, पकड़ा गया, मैंने चोर को पकड़ लिया। ये चोर कौन है, ध्यान दीजिएगा। सारा खेल मन का है, चोर ये मन है। वह बोले, जीवन में दुख है, दुख का कोई कारण है, वो कारण इच्छा है, वो इच्छा को हटाने का कोई तरीका है। ये चार पंक्तियां जिसे बुद्धिज्म कहता है फोर नोबल ट्रुथ, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग हैज ए कॉज, कॉज इज द डिजायर, देयर हैज टू बी अ वे टू एंड द डिजायर। बस उन्हें ज्ञान हो गया, लेकिन इस डिजायर को, इस इच्छा को कैसे निकाला जाए, उन्होंने यहां पर बात की एट फोल्ड पाथ, कहा जाता है आठ चीजें बताई, आठ पॉइंट बताए। पहला बताया राइट विजन, अर्थात आपकी दृष्टि सम्यक दृष्टि, आपकी दृष्टि पावन होनी चाहिए, हैविंग द राइट विजन। इसका मतलब हुआ भगवान ने आपको आंखें दी हैं, आप अपनी आंखों से पवित्रता को देखने का प्रयास करें। अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने नेत्र को संभालना होगा कि आपके नेत्र वो चीजें पढ़ें, उन चीजों को सुने, देखें जो आपके अंदर दिव्यता लेके आते हों, जो दिव्यता का उजागर करते हों। जैसी दृष्टि होगी वैसी आपको सृष्टि नजर आएगी। भगवान बाबा क्या बोलते हैं, डू गुड, बी गुड, सी गुड, थिंक गुड, स्पीक गुड। दूसरा पॉइंट था राइट थॉट, सम्यक संकल्पम। योर थॉट्स हैव टू बी प्योर, आपके विचार पवित्र होने चाहिए। जब हम दो पल के लिए खाली बैठते हैं, हमारे मन में क्या चलता है, अच्छे बातें चलती हैं, बुरी बातें चलती हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तीसरा पॉइंट था सम्यक वचनम, राइट स्पीच। स्पीच का क्या अर्थ है, भगवान बाबा ने क्या बोला 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट में, ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली। आप किसी को चांटा मार दें वो आदमी आपको माफ कर सकता है, लेकिन किसी को आप जीभ से, 2.5 इंच की जीभ जो बिना हड्डी की जीभ है, उससे गलत बात बोलने, वो दुख उसको भीतर जाके लग जाता है। इससे बोलते हैं ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली। अपनी जुबान से, अपनी जीभ से, अपनी जीवा से केवल पवित्र शब्दों का प्रयोग करें। राइट इनर कॉन्शियसनेस, सम्यक अंतर्कण। अंतर्कण में क्या आता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त का अर्थ है लाइक ए मेमोरी, जहां पर आप स्टोर करते हैं, यानि कंप्यूटर में स्टोरेज करते हैं हम डाटा को। इस प्रकार मन के अंदर जो आप सोचते हैं, जो देखते हैं, जो मुझसे बोलते हैं, वो सब आपके मन में, चित्त में जाके लिखा जाता है। फिर कहा गया बुद्धि, बुद्धि इज अ डिस्क्रिमिनेशन पावर, रीजनिंग पावर, जो सही या गलत में आपको फर्क बतलाती है। तीसरा मन, जहां पर विचार उमड़ते रहते हैं। और चौथा अहंकार, जो अपने आप को 30 मार्का समझता है, अपने आप को शरीर समझता है, मन समझता है, आत्मा समझने का मौका नहीं देता। कहा गया राइट इनर कॉन्शियसनेस, ताकि आप अपने अंतर्कर्ण को किसी भी तरीके से शुद्ध करें। अब आप विचार कीजिए क्या अब ये कैसे कर सकते हैं। आगे कहा पांचवा पॉइंट बोला सम्यक कर्मा, अर्थात राइट कर्मा, ताकि आपके कर्म वो हों जो शास्त्रों के अनुसार चलते हों, आपके कर्म वो हों जो परमात्मा को प्रसन्न करने वाले हों, आपके कर्म वो हों जिसको शास्त्र एंडोर्स करते हों, जिसको शास्त्र कहते हैं सही कर्म है। अब बार बार शास्त्र नहीं खोल सकते लेकिन अपने भीतर जहां के परमात्मा से वार्तालाप कर सकते हैं। छठी बात बोली सम्यक साधना, आपके साधना ठीक होनी चाहिए, राइट साधना, राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वो क्या चीज है? राइट स्पिरिचुअल साधना का अर्थ है आप वो कर्म करें जो परमात्मा के जाने वाले हों। साधना का अर्थ है प्योरिटी एंड हार्मनी इन थॉट वर्ड एंड डीड। हम कहते हैं मैं पूजा कर रहा हूं, मैं रिचुअल कर रहा हूं, मैं कर्म कांडी बन गया हूं, वो नहीं। द हाइएस्ट साधना इज कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सबसे बड़ी साधना है। साथ ही बात राइट लिविंग, सम्यक जीवनम, अपने जीवन को इस प्रकार से जिए। कैसे जिए? आपने क्या जीवन का आइडियल बनाया है? आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं? क्या भगवान बाबा को जीवन को देख के इंस्पायर हुए? जो भगवान बाबा ने इतना काम किया ये आप करने की धारणा रखते हैं? क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? इस प्रकार से जियो कि आपके जाने के बाद सारा संसार आपको याद रखे। लोग कहते नहीं है लिव इन ए वे द प्रीस्ट डजंट हैव टू लाई इन योर फ्यूनरल। अब ऐसे जियो कि पंडित को आपके फ्यूनरल में जब आपको अग्नि दी जाए, तिथिया जलाई जाए, आपके बारे में दो शब्द जब बोले, उन्हें झूठ बूट की बातें ना बोलनी पड़े कि बहुत अच्छे आदमी थे। और अगला पॉइंट है राइट कंसंट्रेशन, राइट मेडिटेशन, यानी कि सम्यक ध्यान। व्हाट इज राइट मेडिटेशन? ध्यान क्या है? वो ध्यान लगाओ जो आपको समाधि की ओर ले जाए। समधि, समधि, धि मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट। सम जैसा दुख हो या सुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, आप केवल एक प्रकार से रहें। ये एट फोल्ड पाथ बताए महात्मा बुद्ध ने। आगे बात को बारंबार बोला है अपने जीवन काल में, वो है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म में अहिंसा, नॉन वायलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस? अहिंसा क्या है? किसी को मारना नहीं। मारना ये नहीं कि जानवर को मार दो, अपनी जीभ से गंदे शब्द बोलकर किसी को मारना नहीं है। डू नॉट हर्ट एनी बॉडी, हेल्प एवर हर्ट नेवर। और आपने ये सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धा। ये गलत है। इसका मतलब होता है आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धि। इसका मतलब होता है बुद्धि शुड फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा, द राइट कंडक्ट। संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन संगम सोसाइटी, नहीं। इसका अर्थ है डाइवर्ट द इंटेलेक्ट टू सर्व द सोसाइटी। धर्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इन धर्म, नहीं। इसका मतलब है फाइंड रिफ्यूज इन द डिवाइन ब्लिस इन लव। धर्म शुड बी फॉस्टर्ड इन सोसाइटी। अब विचार करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने समाज को आत्मिकता की ओर लेकर जाएं। महात्मा बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन इन चीज में लगा दिया। हमने प्रयास किया है संक्षेप में महात्मा बुद्ध के संदेश को आप तक लेकर आए। और जानना चाहते हैं और पढ़िएगा महात्मा बुद्ध की वाणी को। जय श्री साईं।
Oh, हो कृष्ण भी तुम हो राम भी तुम हो कृष्ण भी तुम हो
राम भी तुम हो कृष्ण भी तुम हो
विश्व रूप तुम हो
विश्व रूप तुम हो
विश्व रूप तुम हो
विश्व रूप तुम हो
साई विश्व रूप तुम हो
सायराम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आप श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक वार्ता सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी के साथ टीम रेडियो साई के सदस्य डॉक्टर दीपक आनंद जी की हुई एक भेंट वार्ता।
रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा साई राम। आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी से, जो कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा लखनऊ में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी, आपका हिंदी कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान बाबा का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रवेश हुआ और आपका उनसे पहला परिचय कब हुआ।
साईराम, सभी श्रोताओं को यह भी एक विचित्र सी बात है कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले मैं बाबा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। मुझे कुछ पता नहीं था, न मैंने बाबा की कभी कोई फोटो देखी थी। उसके कुछ वर्ष पूर्व मुझको एक बड़ा भयानक रोग हुआ, एप्लास्टिक एनीमिया। इस रोग में शरीर में रक्त बनना बंद हो जाता है।
तो क्या ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर कह सकते हैं?
हाँ, कह सकते हैं
जी।
जैसे ब्लड कैंसर में रक्त बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, एक तरह की कोशिकाएं, इसमें रक्त मज्जा बोन मैरो सूख जाती है बिल्कुल।
अच्छा।
जिससे ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। और जब ब्लड बनना बंद हो जाता है तो जो पुराना ब्लड शरीर में है वो धीरे धीरे नष्ट होता रहता है।
अच्छा।
और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब शरीर में ब्लड रह नहीं जाता।
ओहो।
उस स्थिति में अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता है ऊपर से।
अच्छा।
तो मेरी स्थिति बहुत खराब थी और मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में इलाज करा रहा था, वहां भर्ती था। ब्लड में एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स, जिनका काम होता है खून को बहने से रोकना।
अच्छा।
और वो इतनी कम हो गई थी, जिनकी नॉर्मल फिगर 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, ये 8,000-10,000 रह गई थी।
अच्छा, इतनी कम हो गई थी।
हाँ,
यानी कि तो बहुत घातक रोग,
बहुत घातक। और इतना ब्लीडिंग हो रही थी हर जगह से, पाखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, नाक से, मुंह से लगातार खून बह रहा था, रुक नहीं रहा था। और इस हालत में मुझको रोज एक यूनिट, दो यूनिट, कभी कभी तीन यूनिट ब्लड चढ़ाया जा रहा था।
अच्छा,
लेकिन बिल्कुल हालत वही थी कि जैसे कोई पानी की टंकी हो और टोटी खुली हो, तो कितना भी पानी भरते रहे वो टोटी से सब निकल जाएगा, पानी रहेगा
नहीं, रहेगा नहीं अंदर।
तो यही हालत थी मेरी। डॉक्टर बिल्कुल उम्मीद नहीं करते थे कि ये बचेगा। सुबह का शाम का कोई पता नहीं रहता था, शाम होती थी तो ये भरोसा नहीं रहता था कि अगले दिन सुबह तक रहेंगे।
पर आपकी पूरी ज्ञानेन्द्रियां एकदम स्वस्थ थी, आप सब कुछ जान रहे थे।
हाँ, सेंसेस ठीक थे,
सेंसेस ठीक थे आपके।
हाँ, लेकिन खून की बहुत कमी थी,
इसकी वजह से
हीमोग्लोबिन 2.5-3 ग्राम
सिर्फ,
उठना बैठना चलना मुश्किल, हालत बहुत ही खराब थी
बिल्कुल।
और घर वाले भी यही समझ रहे थे कि अब कुछ होने वाला है नहीं, डॉक्टर भी यही समझ रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, जब तक चल रहा है चल रहा है। और बींग ए डॉक्टर की, डॉक्टर होने के नाते मुझको भी इस बीमारी की भयावहता का अंदाज था
आपको।
ऐसे में एक रात मुझको स्वप्न दिखा कि मैं एक सड़क के किनारे लेटा हूं, पड़ा हूं सड़क के किनारे दीनहीन दशा में, और सड़क पर से एक बग्घी निकली, घोड़े उसको खींच रहे थे, और उस बग्घी में एक दिव्य स्वरूप बैठा हुआ था,
कोई महात्मा के,
हाँ महात्मा गेरुआ वो पहने हुए,
हाँ,
और उन्होंने मुट्ठी में से, अपनी मुट्ठी से कुछ मेरी तरफ फेंका।
अच्छा,
और फिर रथ आगे निकल गया, जो कुछ फेंका था वो मेरे चारों ओर बिखर गया। मैंने देखा तो उसमें कुछ मेवा थी, ड्राई फ्रूट्स,
अच्छा
काजू थे, मखाने थे, बादाम थे, उसको मैं खाने लगा, कुछ क्वाइंस भी थे उसमें, सिक्के। तो मैंने देखा एक सिक्का बहुत चमक रहा है, तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो नींद खुल गई मेरी। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये हुआ क्या। सोचता रहा, जो हमारे संग एकाध लोग थे उनको बताया, उन्होंने मजाक बनाया, कहना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है धीरे धीरे लगता है। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जब वो सुबह आए मेरे लिए चाय नाश्ता लेके, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जो आकृति, जो स्वरूप बैठा था रथ में, जरा सब उसका वर्णन बताओ। तो मैंने जब वर्णन बताया तो उन्होंने अंदाज लगाया, उन्होंने कहा ये तो सत्य साईं बाबा से मिलता जुलता आप आकृति बता रहे हैं। तो उनके एक मित्र थे, वो बाबा के अनन्य भक्त थे, श्री बसंतलाल शर्मा।
अच्छा,
उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मीटिंग में हूं और मैं शाम को आऊंगा। अब वो शाम को 5 बजे 4:30 बजे के लगभग मेरे पास आए और उन्होंने अपनी जेब से बाबा की फोटो निकाल के मुझको दिखाई। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल,
तब यही सोचा कि हाँ भगवान बाबा ही थे।
हाँ,
अरे वाह।
तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं तो ये बेईमानी नहीं होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बाबा ने दर्शन दिए हैं तो समझिए आपके कष्ट दूर हो गए।
हाँ, भगवान बाबा खुद ही कहते हैं कि दर्शनम पापनाशनम,
जी
जितने हमारे पूर्व जन्म जितने भी कर्म होते हैं, पाप होते
कट जाते हैं,
उनके दर्शन से कट जाते हैं।
तो उन्होंने विभूति बाबा की मेरे माथे पे, गले में, गए पीठ में, पेट में, सब जगह लगाई, मुझको एक फोटो भी दी, और फिर उन्होंने हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक पत्रिका निकलती है श्री सत्साई समाचार, मासिक पत्रिका है, उसके संपादक हैं श्री मदन मोहन राय, उनका नंबर मुझको दिया।
अच्छा,
और फिर तो क्या चमत्कार हुआ कि ब्लीडिंग एकदम रुक गई विभूति लगते ही।
अरे वाह,
वहां के डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि ये हुआ क्या,
ये चमत्कार कैसे,
चमत्कार हुआ कैसे। उन्होंने मुझको 2-3 दिन और रखा अस्पताल में, और उसके बाद उन्होंने कहा अब आप घर जा सकते हैं।
आश्चर्यजनक
था मेरे लिए भी।
और आपको तो खून चढ़ा होगा कई साल तक।
हमको तो करीब खून चढ़ा है करीब 15-16 साल।
15-16 साल और 3 दिन के अंदर में अस्पताल से वापसी।
हाँ,
अरे वाह।
सैकड़ों यूनिट, कम से कम 600-700 यूनिट ब्लड चढ़ा मुझको।
अरे भगवान।
और डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी बड़ी हैरत तंगेज घटना थी। मैं जैसी
की दस्तक आप सुन रहे थे और तीन दिन के अंदर वापस घर।
निश्चित
कमाल है।
घर आते ही मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने राय साहब को फोन किया। राय साहब भी बड़ा प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने फिर दो सज्जन हमारी कॉलोनी में रहते थे उनको भेजा कुछ बाबा का साहित्य देके और बाबा की फोटो विभूति सब देके भेजा। और उसके बाद तो फिर ब्लड चढ़ने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। जो एक एक दिन में दो दो तीन तीन यूनिट ब्लड चढ़ता था वो हफ्ते में जरूरत पड़ती थी, दस दिन में जरूरत पड़ती थी, जाते थे
तो अंतराल बढ़ गया उसका,
काफी अंतराल बढ़ गया। और एक जने क्या एक मन में जैसे एक आशा पैदा हो गई।
हाँ, नया उत्साह।
हाँ, ऐसा लगा कि किसी का हाथ है हम पर और किसी की कृपा है हम पर। पहले बिल्कुल निराश, बिल्कुल जस्ट ऐसा लगता था कि मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। घर में भी कोई किसी तरह की कोई हर्षोल्लास का वातावरण नहीं रहता था,
बिल्कुल
सब डरे सहमे रहते थे कि कब क्या खबर मिल जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन वो चीज दूर हो गई, फिर लगा कि हाँ कोई हमारा योगक्षेम देखने वाला है।
तो ज्ञान प्रकाश जी, मैं तो ये कहूंगा कि मृत्यु के दस्तक के बाद में आपके जीवन में एक नया प्रभात आया।
जी बिल्कुल,
नई सुबह हुई।
हाँ,
तो उसके बाद वो लोग आपके पास में आए।
हाँ, वो दोनों सज्जन आए, बीच बीच में संपर्क करते रहे, बाबा के बारे में बताते रहे। अच्छा, भजन वगैरह भी होते थे लेकिन ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी कि मैं भजन में जाकर बैठ सकूं। हीमोग्लोबिन बहुत कम था।
अच्छा,
लेकिन उन्हीं से कभी कभी हमको कोई सीडी मिल जाती थी, कैसेट मिल जाता था, उसको सुन लेते थे। हमको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा हुआ था। ये प्लास्टिक एनीमिया में जब ब्लड बहुत कम हो जाता है तो इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं।
अच्छा।
तो इसलिए मुझको करीब पौने दो साल एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में रखा था, एकदम अलग कमरे में। तो उस समय खैर मेरे लिए और भी ये अच्छा रहा कि बाबा की जो पुस्तकें थी उनको मैंने खूब पढ़ा,
अध्ययन किया आपने,
दिया भी लोगों ने, खूब पढ़ते रहे और बड़ा अच्छा लगा।
अच्छा ज्ञान प्रकाश जी, भगवान कहते हैं कि वो सर्व देवता स्वरूप हैं।
जी,
आपका इससे पहले भगवान बाबा से कोई परिचय नहीं था।
नहीं,
पर भगवान बाबा ने आप पे कृपा करी।
हाँ,
यानी किसी न किसी रूप में आपके परिवार में या आप में भगवान की पूजा जरूर की होगी, उनका ध्यान जरूर किया होगा, उनमें आपकी आस्था जरूर होगी। तो आपके परिवार में कोई और ऐसे हैं जो बहुत भक्त हैं और वो भक्ति आपके अंदर भी कुछ हद तक रही हो जिसकी वजह से भगवान बाबा ने कृपा करी?
हाँ, ये बिल्कुल मानते हैं, ये मानते हैं। जैसे हमारी पत्नी है,
जी
वो बहुत ही शांत प्रकृति की, बड़ी सज्जन प्रवृत्ति की हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। संभव है उनकी वजह से कुछ हुआ हो,
उनकी प्रार्थनाओं की वजह से
हुआ हो।
बिल्कुल।
अच्छा, बाकी हम लोगों के यहाँ माहौल पूजा पाठ का माहौल रहता ही है। कुछ इतनी बीमारी हमारी थी कि और पूजा पाठ में लोगों का मन लगने लगा, कभी महामृत्युंजय जप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है,
क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है।
हाँ, बस यही समझिए। लेकिन भगवान बाबा के तो अनायास दर्शन हुए स्वप्न में।
देखिए,
कभी हमने उनकी फोटो तक नहीं देखी थी इसके पहले। लेकिन अनायास अब मुझ में क्या देखा बाबा ने कि मुझ पर कृपा की, मुझको दर्शन दिए स्वप्न में, अब ये तो वही जाने बाबा।
क्योंकि हमारा उनसे संबंध जो है सिर्फ एक जन्म का नहीं, वो सैकड़ों ही जन्मों का।
जी,
जैसे भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि तुम नहीं जानते हो कि तुम और मैं कितने जन्म साथ रहे हैं, पर मुझे उनका ज्ञान है, इसलिए मैं तुम पे कृपा कर रहा हूँ। तो ये तो संबंध जन्म जन्म के हैं,
मानना पड़ेगा,
ये तो मानना पड़ेगा।
जी जी बिल्कुल।
तो पर इस परीक्षा की घड़ी में आपका मन का धैर्य बना रहा? आप खुद डॉक्टर हैं, आपको मालूम था कि ये बीमारी जो है जल्दी ठीक होने वाली नहीं है और मृत्यु की दस्तक है, बिल्कुल ये बीमारी का नाम भी लेना। तो उस समय आपके मन में दृढ़ता थी या आपके मन में निर्बलता थी या आप हताश हो गए थे या आपके मन में कुछ विश्वास की किरण थी?
सही कहूं अगर तो जब मेरी डायग्नोसिस कन्फर्म हुई तो मैं बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया और मुझे ये लगा कि अंधेरा छा गया है आंखों के आगे। और शायद मैं एक डेढ़ दिन तक तो रोता ही रहा।
अच्छा।
क्योंकि लगा कि अब कुछ बचा नहीं जीवन में। और ऐसी बीमारी का नाम जब डायग्नोसिस मैंने अब कार्ड पे देखी, उस पर एप्लास्टिक एनीमिया लिखे हुए, तो शुरू में तो बिल्कुल मैं
हताश हो गए
निराश हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे मन को काबू में किया,
ढांढस बंधाया।
हाँ, ढांढस बंधाया अपने को, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। करते नहीं। क्या
दिया।
करते क्या,
तो भगवान परीक्षा लेते हैं, पर हमें उसमें उत्तीर्ण होने का बल भी प्रदान करते हैं।
बस बिल्कुल सही,
वो आपके जो मन का अंदर का बल था, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति विश्वास था, उसने आपको परीक्षा में
वो भी उन्होंने दिया। जो आत्मबल था वो भी उन्होंने दिया,
उन्होंने दिया, वही देने वाले हैं। जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा,
दवा भी देगा। बिल्कुल।
तो इस भगवान बाबा कहते हैं कि कालातीत आए हैं, वो तो समय के भी परे
परे हैं जी।
तो हमारा अगर कोई आखिरी समय भी आ गया है तो भगवान बाबा उस समय हमको बचाव कर सकते हैं।
इस तरह का एक अनुभव हुआ मुझे,
जरूर बताइए हमें,
जो मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा।
जरूर जरूर।
कि इस घटना के बाद बीच में बाबा के और दो तीन बार दर्शन हुए, लेकिन एक जो विशेष घटना हुई, इसके मेरा ख्याल है कि करीब दो सवा दो साल बाद की घटना होगी। ब्लड चढ़ता रहता था, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, कम चढ़ता था ब्लड, लेकिन चढ़ता रहता था, बिल्कुल मुक्ति नहीं मिली थी ब्लड चढ़ने से। तो एक रात मुझे फिर स्वप्न दिखा कि एक खाली कमरा है,
अच्छा
छोटा सा कमरा है, और मैं बैठा हूं फर्श पे, अकेले बैठा हूं। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुलता है और बाबा अंदर आते हैं, उनके साथ एक सज्जन कोई और हैं। तो बाबा को देख के मैं खड़े हो जाता हूं, तो बाबा उन सज्जन से कहते हैं मेरी तरफ इशारा करके कि जरा इसकी बात सुन लो क्या कह रहा है।
अच्छा।
फिर बाबा चले जाते हैं, वो सज्जन मेरे पास आते हैं, कुछ पूछते हैं मुझसे, क्या पूछते हैं मुझे स्मरण नहीं इस समय, लेकिन ये ध्यान है कि उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, शायद नब्ज देखी या जो किया हो। उसके थोड़ी देर बाद बाबा फिर अंदर आते हैं, तो वो सज्जन उनसे कहते हैं कि बाबा ये तो काल है। अच्छा। बाबा ये तो काल है। तो बाबा कहते हैं कि अगर काल है तो फिर मैं बीच में नहीं आऊंगा।
ओहो, यानी कि आपके जीवन काल का समय संपूर्ण।
हाँ,
वो भगवान बाबा कह रहे हैं कि मैं बीच में नहीं आऊंगा।
हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर काल है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा।
अच्छा।
इतना कह के वो दोनों लोग बाहर चले जाते हैं, मेरे शरीर में दम ही नहीं रहता। जब ये कह दिया कि काल है और काल के बीच में मैं आऊंगा नहीं, तो बचा क्या फिर।
बिल्कुल।
तो मैं तो जमीन पे गिर जाता हूं, रो रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं क्या। थोड़ी देर बाद एक दूसरे एक सज्जन अंदर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बाबा आपको अंदर बुला रहे हैं।
अच्छा।
अब मैं किसी तरह से जाता हूं, लड़खड़ाता हुआ जाता हूं उनके साथ, हिम्मत तो है नहीं। और एक बड़े से हॉल में वो मुझको ले जाते हैं और वहां कुर्सियां लगी हैं, गोल घेरे में कुर्सियां लगी हैं। ये इतना स्पष्ट मुझको स्वप्न दिखा जो मुझको बिल्कुल अभी भी एकदम सीन मेरे आंखों के सामने है। बाबा एक कुर्सी बैठे हैं और मुझको बगल में इशारा करते हैं बैठने के लिए।
अच्छा।
तो मैं उनके बगल की कुर्सी बैठ जाता हूं। बाबा पूछते हैं मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मैं तो वैसे ही अधमरा हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं रो रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं। फिर बाबा थोड़ा पूछते हैं कि अरे क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या चाहते हो। अब वो जोर से बोलते हैं तो मेरा रोना और तेज हो जाता है, मैं क्या बोलूं। फिर जो घटना मैंने देखी वो बिल्कुल अभी भी सोचते हैं तो शरीर कांप जाता है।
अच्छा।
बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और फिर उनके चेहरे की तरफ, इतना चेहरा उनका प्रकाशमय हो गया, इतना उनकी वाणी इतनी तेजस्वी और गंभीर वाणी हुई, और मेरी पीठ पर हाथ रखा बाबा ने और उन्होंने कहा काल है तो क्या, मैं तुम्हें ग्रेस देता हूं।
अरे वाह।
ये शब्द, मतलब मैं तो समझता हूं शायद इतने प्रभावशाली शब्द थे कि शायद कोई जो मरे हुए को जिलाने के जैसे थे। और बस उन्होंने इतना कहा और मेरी नींद खुल गई।
अच्छा।
अब शरीर कांप रहा था। जो वाणी, वो अभी भी लगता है कि वाणी जैसे जैसे लोग कहते हैं आकाशवाणी,
आकाशवाणी अब भी गूंज रही है,
गूंज रही है। मैं तुम्हें ग्रेस देता हूं,
मैं तुम्हें अपनी कृपा देता हूं,
कृपा देता हूं,
क्या बात है।
और उसके बाद तो फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि पीजीआई के डॉक्टर्स आज तक समझ नहीं पाते। उसके बाद पीरियड और बढ़ गया, ब्लड चढ़ने की फ्रीक्वेंसी 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, और जहां तक मुझे ख्याल है शायद दिसंबर 6 या जनवरी 7 में आखिरी ब्लड चढ़ा, करीब 5 साल से अधिक हो गया।
और आपको उसके बाद ब्लड नहीं चढ़ा?
ब्लड नहीं चढ़ा 5 साल से,
बात है
5 साल से अधिक हो गया।
बहुत अवर्णनीय आपका जो है,
ब्लड नहीं चढ़ा मुझको। और थोड़ा कम रहता है हीमोग्लोबिन वगैरह, लेकिन अपना काम करने भर को पर्याप्त है। हम अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी कर लेते हैं, बच्चों का विवाह संपन्न कर लिया, सब।
क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर।
अब कोई वो नहीं है,
कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है?
नहीं नहीं,
तो वही है कि भगवान बाबा ही संहारक हैं, वही रक्षक हैं, क्योंकि वही सर्व देवता स्वरूप संपन्न पूर्ण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही हैं,
सब वही
काल भी वही हैं, कालातीताई भी वही हैं।
बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल से अगर हम आपके अनुभव के बारे में थोड़ा सोचें अग्रवाल जी, तो मैं समझता हूं कि जैसे तुलसीदास जी ने एक बार कहा था कि मैंने गीता के अंदर में मैंने कई पढ़े हैं कि भाई ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, अष्टांग मार्ग भी है,
जी,
पर मैं तो किसी मार्ग के लायक नहीं हूं, मैंने तो अपने लिए एक अलग मार्ग ढूंढ लिया है, वो मार्ग है समर्पण का।
समर्पण का, बिल्कुल,
दयनीयता का। कि भगवान बाबा हम तो किसी कुछ करने के लायक नहीं है, हम चरणों में आपके पड़े हैं,
बिल्कुल,
और आपको ही हमें तारना है।
मैं भी अपने में कोई पात्रता
मार्ग जो है वही समर्पण का मार्ग,
अपने में कोई पात्रता नहीं पाता हूं कि बाबा ने इतनी बड़ी कृपा क्यों मुझ पे की।
यही सबसे बड़ी पात्रता है, समर्पण कर दिया भगवान बाबा के चरणों में, तो मेरे ख्याल से
अद्वितीय,
तो वो हमें फिर सब इम्तिहान में उत्तीर्ण कर देंगे अपने आप ही, ग्रेस से ही।
और इसी के बाद हमारे घर वाले भी, अच्छा इसके बाद अगर घर वाले न बाबा पर यकीन करें तो कैसे?
वो तो उन्हें करना ही चाहिए,
करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल।
अभी भी मैं जाता हूं पीजीआई, कभी कभी जाता हूं, 4 महीने 6 महीने में एक बार जाता हूं, और वहां के डॉक्टर्स भी देख के हैरत में आते हैं कि ये घूम रहा है, फिर रहा है, चल रहा है, अपना काम कर रहा है, रिपोर्ट देख के हैरत में पड़ते हैं कि क्या हुआ इसको, इसका हुआ क्या, कैसे जीवित है ये।
भगवान कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड साइंस, तो जहां पर विज्ञान की सीमा है वहां पर हमारा अध्यात्म शुरू होता है।
वैज्ञानिकों
क्या मालूम कि अध्यात्म की सीमाएं कहां है?
मैंने भी पढ़ा एक जगह कि उसमें कहते हैं कि विज्ञान की सीमा है ज्ञात और अज्ञात, कुछ ज्ञात है, जो नहीं ज्ञात है वो पता चल जाएगा, अज्ञात है।
बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन इसमें तो अज्ञेय जो जाना ही नहीं जा सकता, अज्ञेय है, तो यही भगवान कृष्ण कहते थे,
खुद कह दिया
कि तुमको उतना ही जानने को मिलेगा जितना मैं चाहता हूं कि तुम जानो,
बस
इससे ज्यादा नहीं।
अनंत है ज्ञान तो,
अनंत है।
जब न्यूटन ने खुद ही कह दिया कि इतने आविष्कार करने के बाद में मैं ये समझता हूं कि मैं एक छोटा बालक हूं जो कि ज्ञान के समुद्र किनारे पर कुछ पत्थरों से और कुछ लहरों से खेल रहा हूं,
बिल्कुल,
और जबकि अनंत सागर ज्ञान का जो है मेरे आगे अवर्णनीय है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं,
किसी को नहीं पता, जानने की चेष्टा
तो
करनी नहीं चाहिए।
गंगा तो भगवान बाबा के चरणों में ही बहती है,
बस बिल्कुल, बिल्कुल।
मेरे ख्याल से
निश्चित रूप से
बहुत बहुत आनंद दिया आपने हमें डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी,
धन्यवाद।
आपने अपने इतने अवर्णनीय, इतने सुंदर और इतने विचित्र अनुभव,
जिससे
हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान बाबा के लिए सब कुछ संभव है,
सब कुछ संभव है, बिल्कुल।
मृत्यु और जीवन उनके खेल है,
उनकी छोटी मोटी बात है उनके लिए, बिल्कुल। मेरा तो ये पक्का अनुभव है कि मेरा जीवन की अवधि बीत चुकी है, अब जो दिन बीत रहे हैं वो बाबा के ग्रेस की वजह से बीत रहे हैं।
पर हम ये जानना चाहेंगे अग्रवाल जी कि इस इतने बड़े अनुभव के बाद में आपको नया जीवन भगवान बाबा ने दिया
जी,
उसके बाद में आप अपने जीवन को अक्कासार क्या समझते हैं कि अब से जो आपको नया जीवन मिला है आप उसे किस प्रकार सार्थक करना चाहेंगे?
सार्थक तो हम इसी तरह करना चाहेंगे कि जहां तक संभव हो जितने लोगों की मदद हो सके, दीन दुखियों की
जी,
वो कर दें, जितनी क्षमता में हो उतना कर दें। और अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों की क्षमता के बाहर है, हम नहीं भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है तो प्रेम तो कर ही सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके बाबा की शिक्षाओं का सार है।
हाँ, प्रेम तो कर ही सकते हैं, किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो नहीं करेंगे
जी,
मुझे तो यही लगता है।
तो बहुत सुंदर, और मेरे ख्याल से जो शीर्षक हमारा रहेगा और जो हमारा जो सार रहेगा आज की वार्ता का, कि जीवन के अंदर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, आपने बहुत पैसा भी कमाया होगा, पर वो सब हमारी जो उपलब्धि नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान बाबा की कृपा का पात्र बनना।
बिल्कुल बिल्कुल,
अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है जीवन में।
आश्चर्य तो मुझको यही लगता है कि मैं अपने को पात्र नहीं समझता, लेकिन तब भी भगवान बाबा ने कृपा की।
पर हम अपने आप को जांच नहीं सकते हैं, भगवान बाबा हमारे पूर्व को भविष्य को जानते हैं,
सब जानते हैं।
इसलिए जो उन्होंने नंबर जितने हमें दे दिए उतने ही फाइनल हैं, उसकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनका कोई और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आज की वार्ता से बहुत लाभ मिला होगा और बहुत ज्ञान मिला होगा और भगवान बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली होगी।
उम्मीद यही है कि लोगों को आस्था रखनी चाहिए,
बिल्कुल
भरोसा रखना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, योगक्षेम वहां में हम,
वहां में हम।
तो बाबा हैं, हमेशा हैं, और हम लोगों का योगक्षेम वही कर रहे हैं,
बिल्कुल
और कोई नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, और जब भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तब हमें अपने सच्ची भक्ति को
विश्वास और दृढ़ होना चाहिए,
निर्भीकता से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और दौर्बल्य को दूर भगाना चाहिए, ताकि हम भगवान बाबा की कृपा हम तक पहुंच सके।
जी जी,
हमें अपने भय से, दुर्बलता से उस कृपा को अपने से रोकना नहीं चाहिए।
जी,
अगर हम जीवन में अपना बाबा का सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वे टू सेल्फ रियलाइजेशन,
जी जी,
यानी कि हमारा जो हमारी आत्मशक्ति है उसे उजागर करके कृपा का पात्र बनना चाहिए,
बनना चाहिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी, आप यहाँ रेडियो साई में आए और आपने अपने अनुभव हम सबके साथ में बांटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साई राम,
जय साई राम,
जय साई राम।
यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी अग्रवाल के साथ हुई हमारी इस भेंट वार्ता के प्रसारण के पश्चात अब प्रस्तुत हैं दो भजन। इन्हें हिंदी रंगमंच के जाने माने गायक श्री कुणाल गांजावाला जी ने स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया था।
साईनाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ साईनाथ साई नाम तेरे हजारों हाथ, साई नाम तेरे हजारों हाथ। तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं घागर, तेरा दर है दया का सागर, सब मजहब भरते हैं घागर, पावन पारस तेरी आग, तेरा पत्थर कण कण राग, तेरा पत्थर कण कण राग। साई राम साई राम तेरे हजारों हाथ, साई राम तेरे हजारों हाथ।
एक जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईं राम साईं राम साईं राम के सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। तेरा मंदिर सबका मदीना, जो भी आए सीखे जीना। चाहे तो टल जाए खात, तू ही भोला तू ही नाथ, तू ही भोला तू ही नाथ। साईं राम साईं राम साईं राम तेरे हजारों हाथ, साईं राम तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईं राम साईं राम साईं राम तेरे हजारों हाथ, साईं राम तेरे हजारों हाथ, साईं राम तेरे हजारों हाथ, साईं राम तेरे हजारों हाथ।
कभी ना मैं भुलाऊंगा, I love you my साईं, तुम्हें कभी ना मैं भुलाऊंगा। I love you, love you, love you, I love you, love you, love you, I love you, I love you। तुम जहां भी जाओगे, तुम जहां भी जाओगे, तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। I love you my साईं, तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा। I love you my साईं, तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा। मिला तो मैंने ये जाना, बनता है कैसे कोई दीवाना इस कदर चाहूं तुझे होश ना अब कुछ मुझे प्यार तेरा कैसा है अपनों से भी अपना है सांसों में तुझको बसाऊंगा I love you मसाई तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा I love you मसाई तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा I love you love you love you I love you love you love you I love you I love you सब मिलकर साईं को कहे कि हम बहुत प्यार करते हैं साईं से बेझिझक आप हमारे साथ गाएं आई लव यू माय साईं बहुत आनंद होगा मैंने कुछ ऐसा काम किया है लम्हा लम्हा तेरे नाम किया है कह रही दीवानगी बिन तेरे क्या जिंदगी तुझसे वादा करना है साईं नाम जपना है सांसों में तुझको बसाऊंगा I love you my साईं तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा I love you my साईं तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा I love you love you love you we love you love you love you we love you we love you love you my साईं तुझे कभी ना हम भुलाएंगे we love you my साईं तुम्हें कभी ना हम भुलाएंगे we love you my साईं तुम्हें कभी ना हम भुलाएंगे we love you my साईं तुम्हें कभी ना हम भुलाएंगे
यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, श्री कुणाल गांजावाला जी द्वारा गाए गए इन गीतों के साथ ही सीधे प्रसारण के अंतर्गत हमारा हिंदी भाषा में होने वाला आज का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इन्हें उनके द्वारा स्वामी के समक्ष साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत कार्यक्रम से लिया गया था। हिंदी में हमारा अगला कार्यक्रम पुनः मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और अगला सीधा प्रसारण गुरुवार की शाम इसी समय होगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। आपके सुझाव एवं टिप्पणियां हमारी उत्तरोत्तर प्रगति में बहुत सहायक होती हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें ईमेल द्वारा हमें भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सबसे विदा लेता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब विशुभाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।